विषय सूची। अध्याय एक, अफीम युद्ध के पूर्व का चीन। अध्याय दो, त्रिकोणीय व्यापार। अध्याय तीन, प्रथम अफीम युद्ध। अध्याय चार, असमान संधि प्रणाली। अध्याय पाँच, थाइफिंग आंदोलन। अध्याय छः, स्वतः सुदृढ़ीकरण आंदोलन। अध्याय सात, चीन में वित्त साम्राज्यवाद। अध्याय आठ, 1898 का सुधार आंदोलन। अध्याय नौ, बॉक्सर आंदोलन। अध्याय दस, चीन की 1911 की क्रांति। अध्याय ग्यारह, सुन यात्सेन और उनके तीन सिद्धांत। अध्याय बारह, मई चतुर्थ आंदोलन। अध्याय तेरह, योद्धा सामंतवाद एवं युवन प्रथाएं। अध्याय चौदह, कुओमिंतांग का उत्थान एवं पतन। अध्याय पंद्रह, चीन में साम्यवाद की स्थापना। परिशिष्ट एक, खांग याओ वेई। परिशिष्ट दो, तशशी। परिशिष्ट तीन, मुक्त द्वार की नीति। परिशिष्ट चार, मांचू सुधार 1901 से 1905 ईस्वी। परिशिष्ट पाँच, शब्दों के नए रूप। अध्याय एक, अफीम युद्ध के पूर्व का चीन, चाइना बिफोर द ओपियम वार। यह अध्याय अर्चना ओझा, जो कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं, के द्वारा लिखी गई है। चीन की सांस्कृतिक विशिष्टता उसकी जलवायु पर आधारित है, जो स्वयं एशिया के स्थलखंड पर निर्भर करती है। शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा के कारण चीन के दक्षिण और पूर्वी तटीय प्रांतों में शिशिर व शुष्क मौसम का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान मध्य एशिया से आने वाली गर्म हवा जब उठती है, तो उसका स्थान नमी भरी समुद्री हवा ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप चीन के तटीय प्रांतों में भारी वर्षा होती है। भौगोलिक रूप से चीन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र। चीन के उत्तरी क्षेत्र में ही वहां की सभ्यता का विकास आरंभ हुआ। यह भूस्थल शुष्क है। यहाँ पर मुख्य रूप से बाजरा तथा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र की मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर चावल का उत्पादन करना संभव हो पाया था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण चावल की खेती एक वर्ष में दो या तीन बार की जा सकती थी। उत्तर में शीत ऋतु की अवधि लंबी होने के कारण खाद्यान्न का उत्पादन केवल 6 महीनों के लिए ही संभव था। दोनों ही क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त मानव श्रम का उपयोग भी गहन रूप से किया गया। चीन का प्रथम ऐतिहासिक वंश, जिसने 1523 से 1023 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, शांग वंश के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तराधिकारी पश्चिमी चोउ वंश 1027 से 256 ईस्वी पूर्व था। दोनों ही वंशों की राजनैतिक व्यवस्था दास प्रणाली पर आधारित थी। भूमि का मालिकाना अधिकार दासों पर नियंत्रण द्वारा संघीय अधिकारियों के पास था। सामूहिक दास श्रम का प्रयोग कृषि उत्पादन के क्षेत्र में किया जाता था, एवं श्रमिक शक्ति पूर्ण रूप से भूमि पर आश्रित थी। पृष्ठ संख्या दो, 772 से 221 ईस्वी पूर्व के काल में पूर्वी चोउ वसंत तथा पतझर युग, स्प्रिंग एंड ऑटम इरा, और प्रतिद्वंदी राज्यों वेरिंग स्टेट के वंशों ने चीन पर शासन किया। इसी काल में दास प्रणाली के स्थान पर धीरे धीरे सामंतवादी समाज का विकास शुरू हुआ। सामंती समाज में उत्पादन की प्रक्रिया पर भूस्वामी का नियंत्रण होता था, जो उत्पादन के स्रोतों एवं उत्पादन करने वाले श्रमिक वर्ग पर अपना आधिपत्य बनाए रखता था। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत कृषक शिल्पकार तथा कलाकार वर्ग अपने श्रम द्वारा उत्पादन के औजारों तथा अन्य स्रोतों पर मालिकाना अधिकार रखते थे, लेकिन उन्हें भी भूस्वामी के नियंत्रण में ही उत्पादन करना पड़ता था। पहले दो वंशों के शासनकाल के दौरान राजनीतिक अधिकार वंशानुगत होते थे, किंतु इस काल में प्रथम बार प्रांतीय प्रशासकीय व्यवस्था का विकास किया गया, जिसके अंतर्गत अधिकारियों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए समय समय पर स्थानांतरण प्रक्रिया के अनुसार की जाती थी। 221 ईस्वी पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक छिन, पूर्ववर्ती हान, शिन और परवर्ती हान वंशों का उदय हुआ तथा सामंतवाद अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंच गया था। इस काल में शासक राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति का प्रतीक बन गया, जिसके नियंत्रण में भूमि थी। शासक के नीचे भू अभिजात वर्ग लैंडेड अरिस्टोक्रेसी के सदस्य रखे जाते थे, जिनके पास वंशानुगत पदवी हेरिडेटरी टाइटल्स तो होते थी, परंतु उनके ओहदे व विशेषाधिकारों में परिवर्तन किए गए। यह सभी उच्च वर्ग कृषक वर्ग के श्रम का उपयोग करते हुए उन पर अत्यधिक भूमि कर, किराया तथा अन्य कर लगाकर उनका शोषण करते थे। इस प्रकार कृषक वर्ग चीन के समाज का सबसे अधिक शोषित वर्ग था। पृष्ठ संख्या 3। उपरोक्त सभी राजवंशों के शासनकाल के दौरान ही चीन में धीरे धीरे धार्मिक विचारधाराओं का विकास आरंभ हो गया था। सबसे अधिक ठोस सबूत सांग व चोउ वंशों से मिलते हैं, जिन्होंने लिखित अभिलेखों का प्रयोग किया है। सांग शासकों का प्रथम राजा ही उनका सर्वोच्च देवता था, क्योंकि वह स्वयं देवपुत्र सन ऑफ गॉड था। इस तरह चीन में राजसत्ता के सिद्धांत में दैवी अधिकारों डिवाइन राइट्स का प्रतिपादन हुआ। प्रथम शासक की मृत्यु के उपरांत वह मृत लोगों पर शासन करने लगा, इसलिए राजकीय चीन की परंपरा में मृत्यु के बाद जटिल रीति रिवाजों की शुरुआत की गई। चीन में मातृप्रधान शक्ति मैट्रियार्कल अथॉरिटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। अंधविश्वास व दैवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हड्डियों से देववाणी को सुनने की प्रथा का विकास किया गया था। चोउ वंश के शासनकाल के दौरान दैवी अधिकारों को दिव्य आदेश हिवेनली मैंडेट के साथ जोड़ दिया गया, ताकि शासकों का व्यवहार दिव्य आदेश के अनुसार हो। शासकों तथा चीन की जनता ने इस विचार का उपयोग समय समय पर किसी भी वंश के शासक को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। प्राचीन चीन की दार्शनिक विचारधारा व्यक्ति विशेष पर आधारित न होकर संपूर्ण समाज पर आधारित थी। अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी की स्थापना से राजनीतिक प्रणाली भी जटिल हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप दर्शन शास्त्रियों का नया वर्ग विकसित हुआ, जिन्होंने पहले अपनी विचारधारा का प्रसार किया, फिर अनुयायियों का गुट तैयार किया तथा अंत में अपने ही दर्शन शास्त्र के गुरु बन गए। चीन में इसी तरह कन्फ्यूशियनवाद संप्रदाय का विकास हुआ था। कन्फ्यूशियनवाद एक पश्चिमी शब्दावली है। चीन में इसे रुचियाओ या विद्वानों के उपदेश के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूशियस इस संप्रदाय के महानतम संत थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विचारों को एक किताब में संग्रहित किया गया, जिसे तर्क विद्या द डायलेक्ट्स कहते हैं। कन्फ्यूशियस का मुख्य उद्देश्य अपने अनुयायियों को राजनीति में प्रवेश पाने के लिए निपुण बनाना था। कन्फ्यूशियसवाद ने विकासशील राज्य कुलीन वर्गों तथा अधिकारी तंत्र को उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार दर्शन शास्त्र दिया। यह संप्रदाय ऐसी धार्मिक रीतियों पर आधारित थी जिनमें शासक की राजनीतिक और धार्मिक शक्तियों का समावेश था तथा पूर्वजों को आदर देना अनिवार्य था। इसकी शुरुआत संभवतः चोउ वंश या इसके पहले हुई थी। ताओवाद टेओइज्म एक अन्य दार्शनिक विचारधारा थी, जिसका विकास बढ़ते हुए युद्धों और निरंकुशवादी शासकों के विचारों के विरोध के वातावरण में हुआ। इसमें मानव और प्रकृति के बीच के ऐसे संबंधों के विकास पर जोर दिया गया, जिनके द्वारा समाज में सौंदर्य बोध का विकास होता है।